धरधारी यशोदा नंदन ब्रज जन रंजन यशोदा नंदन ब्रज जन रंजन यमुना तीरा वनचारी यमुना तीरा वनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपीजन वल्लभ गिरिवर धारी जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राज का आचार्य अष्टोत्तर सत हिज डिवाइन ग्रेस अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय श्री श्री राधा गोकुलानंद की जय श्री श्री गौरनिताय की जय श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा मई की जय निताय गौर प्रेमानंदे समवेत भक्त वृंद की जय समवेत भक्त वृंद की जय समवेत भक्त वृंद की जय श्री श्री गुरु गौरांग की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम श्रीमद् भगवद गीता 11वां स्कंद विराट रूप तस्मात् प्रणम्य प्रणिधाय कायं प्रसादये त्वाम् अहम् ईशम् ईड्यम् पिता इव पुत्रस्य सखा इव सख्युः प्रियः प्रियायाः अर्हसि देव सोढुम् तस्मात् प्रणम्य प्रणिधाय कायम् प्रसादये त्वामहमीशमीड्यम् पितेव पुत्रस्य सखेव सख्युः प्रियः प्रियायार्हसि देव सोढुम् तस्मात् प्रणम्य प्रणिधाय कायम् प्रसादये त्वामहमीशमीड्यम् पितेव पुत्रस्य सखेव सख्यो प्रियः प्रियायार्हसि देव सोढुम् तस्मात् प्रणम्य प्रणिधाय कायम् पुत्रस्य सखेव सख्युः प्रियः प्रियायार्हसि देव सोढुम् तस्मात् प्रणम्य प्रणिधाय कायम् प्रसादये त्वामहमीशमीड्यम् पितेव पुत्रस्य सखेव सख्युः प्रियः प्रियायार्हसि देव सोढुम् माताजि तस्मात् प्रणम्य प्रणिधाय कायम् प्रसादये त्वामहमीशमीड्यम् पितेव पुत्रस्य सखेव सख्युः प्रियः प्रियायार्हसि देव सोढुम् तस्मात् प्रणम्य प्रणिधाय कायम् प्रसादये त्वामहमीशमीड्यम् पितेव पुत्रस्य सखेव सख्युः प्रियः प्रियायार्हसि देव सोढुम् तस्मात् अतः प्रणम्य प्रणाम करके प्रणिधाय प्रणत करके कायम शरीर को प्रसादये कृपा की याचना करता हूँ त्वाम आपसे अहम मैं ईशम भगवान से ईड्यम पूज्य पिता इव पिता तुल्य पुत्रस्य पुत्र का सखा इव मित्रवत सख्युः मित्र का प्रियः प्रेमी प्रियायाः प्रिया का अर्हसि आपको चाहिए देव मेरे प्रभु सोढुम सहन करना। अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा। अनुवाद: आप प्रत्येक जीव द्वारा पूजनीय भगवान हैं, अतः मैं गिरकर सादर प्रणाम करता हूँ और आपकी कृपा की याचना करता हूँ। जिस प्रकार पिता अपने पुत्र की ढिठाई सहन करता है या मित्र अपने मित्र की धृष्टता सह लेता है या प्रिय अपनी प्रिया का अपराध सहन कर लेता है, उसी प्रकार आप कृपा करके मेरी त्रुटियों को सहन कर लें। तात्पर्य: कृष्ण के भक्त उनके साथ विविध प्रकार के संबंध रखते हैं। कोई कृष्ण को पुत्रवत, कोई पति रूप में, कोई मित्र रूप में या कोई स्वामी के रूप में मान सकता है। कृष्ण और अर्जुन का संबंध मित्रता का है। जिस प्रकार पिता, पति या स्वामी सब अपराध सहन कर लेते हैं, उसी प्रकार कृष्ण सहन करते हैं। ओम ज्ञानतिमिरांधस्य ज्ञानांजनशलाकया चक्षुरोन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादां सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नम ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघायते गिरिं यत्कृपातमहं वंदे श्रीगुरुं दीनतारणं। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरद्विषे नमः। पञ्चतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकं। आराध्यो भगवान् व्रजेशतनयस्तद्धाम वृन्दावनम्। रम्या काचिदुपासना व्रजवधू वर्गेणया कल्पिता श्रीमद्भागवतं प्रमाणममलं प्रेमापुमर्थो महान् श्रीचैतन्यमहाप्रभोर्मतमिदं तत्रादर न परः। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंध जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानु प्रिये देवी प्रणमामि हरि प्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। हम सब जानते हैं कि अर्जुन श्री कृष्ण के प्रिय मित्र थे। अर्जुन और श्री कृष्ण के बीच में घनिष्ठ मैत्री थी, प्रेम का संबंध था। जैसे श्रील प्रभुपाद जी यहां तात्पर्य में बताते हैं कि भगवान कृष्ण के साथ अनेक प्रकार के संबंध स्थापित किए जा सकते हैं। यहां पर भौतिक जगत में भी हम देखते हैं कि लोगों के बीच में विविध प्रकार के संबंध होते हैं। कईयों के बीच में मैत्री का संबंध होता है, कई ऐसे होते हैं जिनमें वात्सल्य संबंध होता है, जैसे पालक और बच्चों का। कईयों के बीच में सेवक और प्रभु का संबंध होता है, कभी पति पत्नी का संबंध होता है। कहीं देखा जाता है वैर या दुश्मनी का संबंध होता है। तो जिस प्रकार से यहाँ विविध प्रकार के संबंध पाए जाते हैं, उसी प्रकार से जैसा हम चाहें वैसे हम भगवान के साथ भी संबंध स्थापित कर सकते हैं। हाँ, वैर या दुश्मनी का संबंध भी स्थापित कर सकते हैं यदि हम चाहते हैं तो। देखिए, घोषणा की गई थी ना, मोबाइल फोन बंद करना चाहिए। हाँ, अब ये कृपया आप देख लीजिए, अपने फोन को खोल कर देख लीजिए। तो जो व्यक्ति भगवान श्री कृष्ण के साथ एक वैर या दुश्मनी का संबंध स्थापित करना चाहता है, तो भगवान कहते हैं ठीक है, ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम्। जो जैसे मेरे साथ भाव प्रकट करना चाहता है, मैं ही उसी प्रकार का बर्ताव उस व्यक्ति के साथ करूंगा। ऐसा नहीं है कि श्री कृष्ण के हृदय में हमारे प्रति वैर की भावना है, कभी नहीं। भगवान श्री कृष्ण परम सत्य हैं, उनका हृदय परम प्रेम का है, मूर्तिमान प्रेम के स्वरूप हैं, कृपा के स्वरूप हैं श्री कृष्ण। भगवान के हृदय में ईर्ष्या, घृणा, वैर ऐसी नकारात्मक भावनाएं बिल्कुल नहीं आ सकती हैं। परंतु जब कोई व्यक्ति, कोई जीव उनके प्रति ऐसे नकारात्मक संबंध स्थापित करने का इच्छुक होता है, तो उसकी इच्छा पूरी करने के लिए भगवान ऐसा बर्ताव करते हैं, मानो कि वो भी एक शत्रु बन गए। परंतु ऐसा होने के बाद भी भगवान उस व्यक्ति के शुभ चिंतक ही होते हैं। यहां पर जब दो व्यक्तियों के बीच में वैर या दुश्मनी होती है, तो दोनों एक दूसरे के शुभ चिंतक नहीं होते हैं, वो दोनों की एक दूसरे की हानि चाहते हैं, नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। परंतु भगवान श्री कृष्ण के हृदय में ऐसे कोई भावना नहीं है। जब वो वैर करने की नकल भी करते हैं, साथ साथ उस तथा कथित दुश्मनी का फल ये होता है कि उस वैर करने वाले व्यक्ति का उद्धार हो जाता है यदि वो भगवान के हाथों मारा जाता है तो। अन्यथा क्या होता है, केवल भगवान से वैर करने से नास्तिकवाद आदि ऐसे सिद्धांतों का या वादों का पालन करने से व्यक्ति केवल नारकीय अवस्था में चले जाएगा, बारंबार उसे नरक में जन्म लेना पड़ेगा, फिर निम्न श्रेणी के योनियों में जन्म लेना पड़ेगा, तो उसकी भलाई कैसे होगी। केवल भक्तों के संग में आकर जब वो समझेगा कि हाँ भगवान हैं और भगवान के साथ हमारा प्रेम का संबंध शाश्वत रूप से विद्यमान है, परंतु हम भूल चुके हैं और हमारे जीवन का ध्येय है, हमारे जीवन में सुख और सफलता प्राप्त करने का एकमात्र उपाय है कि हम भगवान कृष्ण के साथ उसी प्रेम के संबंध को स्थापित कर लें जो कि हम भूल चुके हैं, जिन भगवान को हमने ठुकरा दिया है, अभी हमें पुनः उनके चरण कमलों में जाकर आश्रय ग्रहण करना है। तो भक्ति के अवस्था में ऐसे प्रेम के संबंध हो सकते हैं, जैसे मित्र, प्रेमी, बच्चे, वात्सल्य इत्यादि। तो अर्जुन श्री कृष्ण के सखा हैं, उनके मित्र हैं, और इसलिए मित्र होने के कारण वो श्री कृष्ण के साथ जब उठते बैठते थे, खाते पीते थे, तो इतने निकट के संबंध में कोई ऐसे विशेष सम्मान आदि नहीं करते थे। जैसे दो मित्रों के बीच में जो बोलचाल होती है, रहन सहन आदि होता है, ऐसे बर्ताव में एक मित्र ऐसा नहीं है कि दूसरे के चरण में पड़ता है, उसको प्रणाम करता है। आपस में मित्र लोग कैसे रहते हैं, बराबर के रहते हैं, एक दूसरे का हंसी मजाक उड़ाते हैं। तो उसी प्रकार से अर्जुन भी कर रहे थे श्री कृष्ण के साथ। परंतु हमें याद रखना चाहिए कि अर्जुन और श्री कृष्ण का संबंध परम प्रेम के स्तर पर है, इसलिए हम नकल नहीं कर सकते। तो जब भगवान श्री कृष्ण में भगवद गीता के 11वें अध्याय में जैसे वर्णित है, विराट रूप अपना दिखाया, तो अर्जुन का सर चकरा गया और अर्जुन सोचने लगा कि अरे, मैंने कितनी बड़ी गलती की, ये तो परम सत्य है, भगवान है, और मैंने तो उनको साधारण व्यक्ति माना, मैंने उनको अपना मित्र ही माना, और इसलिए मैंने बहुत अपराध कर लिया भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों में। फिर अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण की स्तुति करना आरंभ किया। हमें याद रखना है कि भगवान श्री कृष्ण के शुद्ध भक्त जो होते हैं, और विशेष रूप से जो वृंदावन के भाव में उनसे प्रेम करते हैं, उन्हें विराट रूप के प्रति आकर्षण नहीं है। अर्जुन तो वृंदावन के भाव में नहीं है, वो द्वारका के भाव में है, फिर भी शुद्ध भक्त हैं, सख्य भाव में है, मैत्री का संबंध है। परंतु श्रील प्रभुपाद जी समझाते हैं कि सारी दुनिया को समझाने के लिए कि श्री कृष्ण कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, और ये साबित करने के लिए कि यदि कोई व्यक्ति अपने आप को भगवान कह के घोषित करता है, तो श्री कृष्ण की तरह ही उसे भी अपना विराट रूप प्रदर्शित करना चाहिए, और यदि कोई ऐसे अपने विराट रूप को प्रदर्शित नहीं कर पाता है, तो हमें जान लेना चाहिए कि वो भगवान कदापि नहीं हो सकते। तो विराट रूप को दिखाने से श्री कृष्ण का उद्देश्य ये नहीं था कि वो अर्जुन को आकृष्ट करें। अर्जुन तो पहले से आकृष्ट थे, पहले से कृष्ण प्रेमी थे वो, परंतु अर्जुन को निमित्त बनाकर वो सारी दुनिया को दिखाना चाहते थे कि देखो, मैं अर्जुन के साथ ऐसे साधारण मित्रों की तरह बर्ताव कर रहा हूँ, मैं भी माता यशोदा के साथ एक साधारण बच्चे की तरह बर्ताव करता हूँ, मैं गोपियों के साथ भी एक ग्वाल बाल तरुण की तरह मैं बर्ताव करता हूँ, परंतु ये नहीं सोचना कि मैं एक साधारण मनुष्य हूँ, मैं परम सत्य हूँ। इसलिए ऐसा कोई संशय किसी के मन में न उत्पन्न हो, भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को विराट रूप दिखाया। और जब दिखाया तो अर्जुन के मन में संकोच हुआ कि अरे, मैंने श्री कृष्ण के प्रति बहुत अपराध किए, और भगवान की स्तुति करते करते अर्जुन ने श्री कृष्ण की कृपा याचना भी की। उन्होंने कहा, सखेति मत्वा प्रसभम यदुक्तम, हे कृष्ण, हे यादव, हे सखेति, कि हे कृष्ण, आपको सखा मान के, सखा इति मत्वा, तो आपको सखा मान के प्रसभम यदुक्तम, मैंने आपके प्रति बहुत सारे अपराध किए, और मैंने क्या किया, आपको बुलाया अलग अलग नामों से, जैसे हे कृष्ण, हे यादव, हे सखा इति, इस प्रकार से मैंने आपको बुलाया। अजानता महिमानम तवेदम, मैं आपकी महिमा को नहीं जानता था। मया प्रमादात प्रणयेन वा अपि, और कभी कभी मेरे पागलपन में, मैंने प्रेम में, कभी कभी मैंने आपको आपकी महानता को न जानते हुए ऐसे नामों से पुकारा। कभी कभी हम बैठते खाते पीते आपके साथ, कभी उसी आसन पे शयन करता था, बैठता था, हम लोग उपहास आदि करते थे, तो कृपया क्षमा कर दीजिए मुझे, ऐसे अर्जुन ने याचना की। और फिर कहा कि वास्तव में पितासी लोकस्य चराचरस्य, कि चर अचर प्राणियों के इस संपूर्ण सृष्टि के पिता ही हैं आप, त्वमस्य पूज्यस्य, और आप ही हैं एक व्यक्ति जो पूजनीय है, आप ही पूज्य हैं संपूर्ण सृष्टि के लिए, आपके अतिरिक्त और कोई नहीं है। ऐसे अर्जुन ने सारी दुनिया के लिए स्थापित किया है यह सत्य कि श्री कृष्ण संपूर्ण सृष्टि के लिए एकमात्र पूजनीय व्यक्ति हैं, सर्वोच्च व्यक्ति हैं। और इसी बात को आज के श्लोक में भी, आज जिस श्लोक की हम चर्चा कर रहे हैं उसी में श्री अर्जुन ऐसे ही कह रहे हैं कि वास्तव में आप क्या हैं, आप अहम ईशम ईड्यम, आप ही मेरे ईश हैं, आप ही ईड्य अर्थात जो पूजनीय है। तो पूजनीय कौन व्यक्ति होते हैं, जो हर दृष्टि से श्रेष्ठ होते हैं। श्रेष्ठ व्यक्ति पूजनीय होते हैं, परंतु यह हम भौतिक जगत में कोई भी व्यक्ति से, व्यक्ति इतना श्रेष्ठ नहीं है, वो इतने दिव्य गुणों से संपन्न नहीं है कि वो संपूर्ण सृष्टि के लिए पूजनीय हो जाए, सिवाय भगवान के जो परम भक्त होते हैं, उनमें भी भगवान श्री कृष्ण के गुण अणु मात्रा में आ ही जाते हैं। और क्योंकि वो भगवान श्री कृष्ण के परम भक्त होते हैं, जैसे श्रील प्रभुपाद जी हैं, वो भी भगवान की तरह ही पूजनीय होते हैं। परंतु हम भेद भी करते हैं कि ये भक्त हैं और कृष्ण भगवान है। तो क्योंकि उनका इतना घनिष्ठ संबंध प्रेम का भगवान के साथ है, तो दोनों पूजनीय होते हैं, परंतु अंततः पूजनीय है हमारे लिए श्री कृष्ण। जब जरासंध का वध हुआ तो उधर द्वारका में और हस्तिनापुर में युधिष्ठिर महाराज सोच रहे थे कि आगे क्या किया जाए। वो जानते थे कि श्री कृष्ण चाहते हैं कि युधिष्ठिर संपूर्ण विश्व के सम्राट बन जाए, क्योंकि युधिष्ठिर महाराज में वो योग्यता थी, वो ऐसे सद्गुणों से संपन्न थे। तो श्री कृष्ण की ये तीव्र इच्छा थी कि आगे चल के जो युद्ध होना है, अभी तक वो कुरुक्षेत्र का युद्ध हुआ नहीं था, होना था आगे चल के। तो उस समय श्री कृष्ण ने ऐसे विचार किया कि युधिष्ठिर महाराज को भी राजसूय यज्ञ करना चाहिए। भक्तों का स्वभाव होता है कि वो भगवान का गुणगान करना चाहते हैं, और भगवान के गुण ऐसे होते हैं कि वो भक्तों को बहुत प्रसिद्ध कराना चाहते हैं, भक्तों का गुणगान सब जगह गाते हैं। तो फिर वहां पर युधिष्ठिर महाराज अपने भाइयों के साथ में विराजमान थे, और राजसूय यज्ञ की तैयारियां प्रारंभ हो गईं। तो पांडवों ने जगह जगह जाकर धनार्जन किया, और इसके बाद ये सारा धन लेकर आए युधिष्ठिर महाराज के पास। उधर युधिष्ठिर महाराज श्री कृष्ण के सामने आए और कहने लगे कि हे कृष्ण, आपकी संतुष्टि के लिए ही हम यहां पर बैठे हैं, इस राज सिंहासन पर। आपकी ही इच्छा है कि मैं विश्व का सम्राट बनूं, तो आपकी संतुष्टि के लिए ही फिर अभी ये राजसूय यज्ञ हम संपन्न करने जा रहे हैं, हम तैयारियां प्रारंभ कर रहे हैं। और जब ये राजसूय यज्ञ समाप्त हो जाएगा तो कृपा करके आप ही राज सिंहासन पर बैठिए और आप विश्व सम्राट बनिए। और यदि आपको ये स्वीकार नहीं है तो आपके आदेश के अनुसार मैं भी यहां बैठने के लिए इस सिंहासन पर तैयार हूं। युधिष्ठिर महाराज अपने घमंड के कारण, अहंकार के कारण राज सिंहासन पर बैठने के लिए तैयार नहीं थे। वो इसलिए उस पद को स्वीकार करने के लिए तैयार थे क्योंकि श्री कृष्ण चाहते थे। साधारणतः लोग दुनिया में ऊंचे पद में बैठना चाहते हैं, परंतु वो केवल अहंकार के कारण। परंतु भगवान के जो भक्त होते हैं वो अहंकार के कारण किसी पद को स्वीकार नहीं करते हैं, वो भगवान की सेवा के लिए सिर्फ स्वीकार करते हैं। तो श्री कृष्ण ने कहा युधिष्ठिर से कि नहीं नहीं युधिष्ठिर, तुम ही योग्य व्यक्ति हो इस राज सिंहासन पर बैठने के लिए, विश्व सम्राट बनने के लिए। तो युधिष्ठिर महाराज ने कहा कि हे कृष्ण, जितने भी ये संपूर्ण सृष्टि के पालक देव आदि हैं, ब्रह्मा इत्यादि, इंद्र, चंद्र, वरुण, ये सारे आपके आदेशों को उनके सर पे स्वीकार करते हैं शिरोधारी कह के। और ये है आपका पद, आपका स्थान, फिर भी हम जैसे झूठे और तुच्छ मूर्ख जैसे छोटे छोटे व्यक्ति होते हैं, जो अपने आप को बहुत बड़ा मानते हैं, जो राज सिंहासन पर बैठने के लिए योग्य मानते हैं, और आप हम सब के सेवक बन जाते हैं और हमारे आदेशों का पालन आप करते हैं। आप इस प्रकार से बर्ताव करते हैं कि जैसे आप एक साधारण मनुष्य हैं, और ये केवल एक विडंबना है आपके लिए। आप एक नट के समान है जो नाटक में कोई भूमिका निभाता है। जैसे कभी कभी एक बहुत धनी व्यक्ति जब नाटक में कोई भूमिका निभा रहा है, हो सकता है बहुत गरीब व्यक्ति की भूमिका निभाए, तो जब लोग उसको देखेंगे कि अरे ये तो गरीब व्यक्ति है, ये तो केवल नाटक में है, वास्तविक स्थिति है कि वो बहुत धनी आदमी है। ठीक उसी प्रकार से जब श्री कृष्ण अपने भक्तों के बीच में आते हैं तो वो अपने भक्तों का सेवक बनने में आनंद लेते हैं। जैसे एक नट नाटक में ऐसे कोई भूमिका लेता है। परंतु हम जानते हैं कि श्री कृष्ण आप कैसे, आप तो परम सत्य ही हैं, आप सूर्य के समान हैं। जब सूर्य का उदय होता है और सूरज आसमान में चढ़ता है और चढ़ के फिर धीरे धीरे वो उदित हो जाता, अस्त हो जाता है, और उस समय हम लोग जो यहाँ पृथ्वी लोक पर रह रहे होते हैं, हमारे लिए अलग अलग अनुभव होते हैं तापमान का। दोपहर के समय हमें गर्मी लगती है, जब सायंकाल का समय आता है तो वातावरण थोड़ा शीतल हो जाता है, लेकिन सूर्य के लिए कोई फर्क नहीं पड़ता है। सूर्य का तापमान उतना ही होता है, चाहे सूर्योदय के समय हो, सूर्यास्त के समय हो, मध्याह्न के समय हो या रात्रि के समय हो। पृथ्वी पर रहने वाले लोगों को तापमान में अंतर की अनुभूति होती है, परंतु सूर्य के लिए नहीं। ठीक उसी प्रकार से है कृष्ण, यहां पर इस भौतिक जगत में आप आके तरह तरह के भूमिकाएं निभाते हैं। आपको ना तो मान से कुछ लेना देना है, सम्मान से, ना भी अपमान से। आप इन सारे मिथ्या जो उपाधियां हैं इनसे आप परे हैं। ऐसे युधिष्ठिर महाराज श्री कृष्ण का गुणगान करने लगे, और उसके बाद फिर यज्ञों की तैयारी शुरू हो गई। और संपूर्ण विश्व से, संपूर्ण पृथ्वी से जो बड़े बड़े राजा थे उनको निमंत्रण दिया गया, और जो बड़े ऋषि मुनि थे उनको भी बुलाया गया, यहाँ तक कि ऊपरी लोकों के जो देवता थे उनको भी निमंत्रण भेजा गया। और धीरे 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 से सारे कोने कोने से, दूर दूर से भी बहुत सारे लोग वहां पर आए, और युधिष्ठिर महाराज ने ऐसी भव्य व्यवस्था की थी रहने के लिए, उनके स्वागत के लिए आदि, कि सभी लोग चकाचौंध रह गए। और भगवान श्री कृष्ण ने भी उस व्यवस्था में बहुत सेवा की, सबके चरण धोए, जितने भी अतिथि थे, दुर्योधन शकुनी सबने सेवा की उस समय। इससे हम ये जान सकते हैं कि ये कुरुक्षेत्र युद्ध के पहले हुआ था। तो खैर ऐसे सब व्यवस्थाएं हो रही थी, उधर यज्ञ मंडप आदि भी तैयार किए जा रहे थे, जो मंत्रों का उच्चारण प्रारंभ हो गया, जितने भी विधियों के अनुसार करना था वो सब हो गया। ऐसे कई दिन बीत गए और सब कुछ परिपूर्ण तरह से हो गया, एक भी त्रुटि नहीं हुई। प्रभुपाद जी बताते हैं कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम में कि ऐसे एक पुरोहित वहां पर हुआ करते थे, जो केवल ये देखते थे कि मंत्रों के उच्चारण में या फिर कोई यज्ञ के विधि आदि में कोई दोष तो न हो, और ये दोष दिखाई पड़ता तो वो तुरंत उसको ठीक कर देते। तो इस तरह से ये राजसूय यज्ञ पूरी तरह से संपन्न हो गया, बिना कोई त्रुटि के, कोई दोष नहीं था उसमें। अब समय आया एक अनुष्ठान के लिए, जिसमें कि सभा में सबसे श्रेष्ठ व्यक्ति को चुना जाना था और उस व्यक्ति की पूजा होनी थी। श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं इसको अग्र पूजा कहते हैं, और ये इसी के समान है जैसे मनुष्यों के बीच में हम जब रहते हैं कोई समिति बनाई जाती है, तो कोई समिति में किसी को अध्यक्ष चुना जाता है। ये हम देश में भी देखते हैं, चुनाव होता है, कोई सरकार आती है चुन के, फिर जो चुने गए हैं वो लोग फिर किसी को अपना प्रमुख चुनते हैं, फिर वो प्रधानमंत्री बन जाते हैं, मुख्यमंत्री बन जाते हैं। तो ठीक उसी प्रकार से जब ऐसी सभा थी वहाँ पे, तो प्रथा थी कि सबसे श्रेष्ठ व्यक्ति को, सबसे पूजनीय व्यक्ति को चुना जाना चाहिए और उनकी उपासना वहाँ होनी चाहिए, अर्घ्य आदि उनको अर्पण किया जाना चाहिए। तो ये इसको अग्र पूजा कहते हैं। तो जब अग्र पूजा का समय आया तो भीष्म देव, ऐसे महाभारत में वर्णन है, तो श्रीमद् भागवतम और महाभारत के वर्णनों को मैं मिला के बता रहा हूं आपको। तो भीष्म देव ने आके युधिष्ठिर महाराज से कहा कि अरे युधिष्ठिर, अभी अग्र पूजा का समय हो गया है, तो चलो तैयारियां की जाएं। तो युधिष्ठिर महाराज ने कहा कि ठीक है, परंतु अग्र पूजा के लिए कौन योग्य व्यक्ति है? तो भीष्म देव ने कहा कि निस्संदेह श्री कृष्ण ही योग्य व्यक्ति हैं, जो कि अग्र पूजा के लिए पात्र हैं। तो वो तो परम सत्य हैं, संपूर्ण सृष्टि के स्वामी हैं, और वो यहां पर देवताओं के उद्देश्य को पूर्ण करने के लिए प्रकट हुए हैं। हम सब तो उनके दास हैं, और उनके जो ऐश्वर्य हैं वो असीमित हैं। और ऐसे भीष्म देव भूरी भूरी प्रशंसा श्री कृष्ण की करने लगे। और फिर भीष्म देव ने सहदेव से कहा कि सहदेव चलो तैयारी करो, अर्घ्य आदि जितने भी सामग्री है पूजा के लिए, अग्र पूजा के लिए, वो तैयार करो और श्री कृष्ण को की पूजा कर लो। उधर श्रीमद् भागवत में ऐसे बताया गया है कि जब ये विषय सभा के सामने रखा गया कि अग्र पूजा किसकी होनी चाहिए, सबसे पूजनीय व्यक्ति कौन है, तो सर्वप्रथम वहां पर सहदेव खड़े हो गए। और सहदेव बहुत साहसी थे, पांडव थे। उन्होंने कहा कि अग्र पूजा केवल कृष्ण की ही होनी चाहिए। श्री कृष्ण यदुवंशियों में से सर्वश्रेष्ठ हैं, अपने भक्तों के रक्षक हैं और सबसे योग्य, सबसे उन्नत व्यक्ति वही हैं। यहां तक कि इस सभा में हम देखते हैं कि बहुत सारे श्रेष्ठ व्यक्ति आए हैं, बलवान व्यक्ति आए हैं, योग्य व्यक्ति आए हैं, ब्रह्मांड के कोने कोने से देवता गण भी आए हैं, फिर भी इन सब के बीच में श्री कृष्ण का स्थान अद्वितीय है, अतुलनीय है। इसलिए श्री कृष्ण की ही पूजा होनी चाहिए। जो भी चीज हमारे अनुभव ऐसे में ऐसी है जिसको हम ऐश्वर्य मानते हैं, वो असीमित मात्रा में श्री कृष्ण में विद्यमान है। और श्री कृष्ण ही इस संपूर्ण सृष्टि के आत्मा है। जैसे हर एक शरीर को चलाने के लिए अंदर एक आत्मा होती है, वैसे इस ब्रह्मांड को चलाने के लिए आत्मा तो स्वयं श्री कृष्ण है। सारे यज्ञ आदि हैं, सारे मंत्रों का उच्चारण है, सारे धार्मिक क्रियाएं हैं, सारे जो आत्म साक्षात्कार की पद्धतियां हैं, ये सारे के सारे केवल श्री कृष्ण को प्राप्त करने के लिए और उनको प्रसन्न करने के लिए है। तो इसलिए श्री कृष्ण जिनका शरीर सच्चिदानंद है, वो श्री कृष्ण जिनके शरीर के किसी एक अवयव से अन्य अवयवों का कार्य संपन्न कर सकते हैं, उन्हीं की पूजा होनी चाहिए। तो वहां पर जितने भी लोग उपस्थित थे उस सभा में, उन सब ने हां में हां मिलाई और प्रशंसा की सहदेव की बातों की, अनुमोदन किया, सराहना की और कहा कि हाँ, सहदेव ने बिल्कुल ठीक कहा है। और उसके बाद युधिष्ठिर महाराज ने बड़े हर्षित होकर श्री कृष्ण के चरण कमलों को धोया, जैसे कि अग्र पूजा में किया जाता है, और उनकी आरती उतारी गई, अर्घ्य आदि अर्पण किया गया। और फिर जो चरणामृत था, श्री कृष्ण का चरणों का अमृत, उसको अपने सर पे स्वीकार किया युधिष्ठिर महाराज ने, और न केवल अपने परिवार के सदस्यों के ऊपर छिड़का दिया, परंतु अपने यदुवंशियों के ऊपर भी छिड़का दिया। तो उधर महाभारत में थोड़ा सा अलग वर्णन है कि सबसे पहले जब युधिष्ठिर महाराज ने भीष्म देव से पूछा कि अग्र पूजा किनकी की जानी चाहिए, तो भीष्म देव ने तो तुरंत कहा था कि कृष्ण की पूजा होनी चाहिए। उस समय शिशुपाल खड़ा हो गया। शिशुपाल की बात तो आप का नाम तो आप सबने सुना है। शिशुपाल असुर वृत्ति का व्यक्ति था, यद्यपि वो भी श्री कृष्ण का रिश्तेदार था। श्री कृष्ण के पिता और शिशुपाल की माता वो भाई बहन थे, इतना घनिष्ठ संबंध था। फिर भी शिशुपाल जन्म से ही ईर्ष्या करता था श्री कृष्ण से। तो शिशुपाल कहने लगा, भीष्म देव को डांटने लगा, जो कि उचित नहीं था। हर दृष्टि से भीष्म देव शिशुपाल से वरिष्ठ थे, तो ये बहुत बड़ा अपराध किया शिशुपाल ने। परंतु उन्होंने कहा कि हे भीष्म देव, हे पितामह, आपने क्या कर दिया? आपने सहदेव जैसे छोटे बालक को पथभ्रष्ट कर दिया, गलत मार्गदर्शन किया, ये कहकर कि श्री कृष्ण को की अग्र पूजा होनी चाहिए। तो किस आधार पर आप ऐसे घोषणा कर रहे हैं कि कृष्ण ही सर्वश्रेष्ठ हैं, वही पूजनीय हैं हम सब के बीच में? यदि आप आयु के आधार पर कह रहे हैं, तो श्री कृष्ण से आयु में वरिष्ठ कितने लोग हैं? वसुदेव हैं और कितने हैं? और यदि आप गुरुत्व या कौन सही गुरु हैं उनके आधार पर निर्णय लेना चाहते हैं, तो यहां पर द्रोणाचार्य हैं, कृपाचार्य हैं। यदि आप संत होने की दृष्टि से देखना चाहते हैं तो यहाँ पर नारद मुनि हैं, यहाँ पर व्यास देव जी हैं, कितने बड़े बड़े ऋषि मुनि आदि यहाँ पर हैं, तो इनको क्यों नहीं चुना गया? और यदि आप इस आधार पर सोच रहे हैं कि आपका साथ देने वाले आपके मित्र कौन हैं, तो कृष्ण ही क्यों? द्रुपद भी तो यहाँ पर खड़े हैं, उनकी भी अग्र पूजा क्यों नहीं? ये श्री कृष्ण हैं, ना तो कोई राजा हैं, ना कोई पुरोहित हैं, ना कोई गुरु हैं, ऐसी कोई योग्यता इनमें नहीं, ना कोई पुण्य भी नहीं है इनमें। और फिर शिशुपाल श्री कृष्ण की ओर घिर के बोलने लगे कि अरे वासुदेव, इन्होंने तो गलती कर ही दी, परंतु तुमने ऐसी गलती क्यों की कि तुमने ये अग्र पूजा स्वीकार कर ली? तुम्हारे अंदर क्या योग्यता है कि तुमने ऐसे साहस कर ली? जिस प्रकार से एक जानवर जाके किसी यज्ञ में घी को चाटने लगता है, तुम भी यहां पर आके इस तरह से कार्य कर रहे हो। तो जैसे ही उसने कहा ऐसे, और गुस्सा आ गया शिशुपाल को ईर्ष्या के कारण, और खड़े होकर शिशुपाल वहां से निकल गया। युधिष्ठिर महाराज धर्मराज हैं, उनका हृदय थोड़ा पिघल गया कि अरे ये मेरे अतिथि हैं, अतिथि मेरे यहां पर आके ऐसे क्रोधित होकर दुखी होकर चले जाएं, ये ठीक नहीं है। तो वो पीछे गए शिशुपाल के, अरे शिशुपाल आइए बैठिए, ऐसे चले मत जाइए। तो शिशुपाल आके बैठे। उधर भीष्म देव ने कहा, युधिष्ठिर ऐसे शिशुपाल को बुलाने की कोई आवश्यकता नहीं है। जो व्यक्ति श्री कृष्ण की आराधना करने के लिए विरोध करता है, वो इस प्रकार से वापस बुलाने जाने के योग्य नहीं है। तो शिशुपाल ने यह सब सुना तो और वहां पे हाहाकार मच गया, कोलाहल मच गया वहां पर। उधर सहदेव खड़े हो गए। सहदेव ने अपने पैरों को, अपने चरणों को उठाया और सारी सभा को दिखाया और कहा कि यदि किसी का साहस हो और वो श्री कृष्ण को अग्र पूजा में रोकने का इच्छुक है तो वो सामने आए, मैं उसे मेरे पैरों के नीचे कुचल दूंगा। कोई है ऐसे व्यक्ति? ये सब क्षत्रिय भाव था ना, उस समय में ऐसे होते थे क्षत्रिय। तो जब ऐसे कहा सहदेव ने तो वहां सन्नाटा छा गया। वैसे तो सारे प्राय सभी लोग श्री कृष्ण के पक्ष में ही थे, परंतु केवल थोड़े लोग ऐसे थे जैसे शिशुपाल और उनके दो चार साथी थे। तो जैसे ही सहदेव ने ऐसे अपने पैर उठाए तो सब ने वाह वाह करना शुरू किया और ऊपर से फूलों की वृष्टि होने लगी कि सहदेव तुमने बहुत अच्छा कार्य कर लिया। और उधर नारद मुनि भी कहने लगे कि जो भी श्री कृष्ण की उपासना करने के लिए तैयार नहीं है, जो ऐसा विरोध करता है, वो एक मृत व्यक्ति के समान है, एक शव के समान है। श्रीमद् भागवतम में शिशुपाल कहते हैं, जैसे ही सहदेव श्री कृष्ण को चुनते हैं अग्र पूजा के लिए, वो कहते हैं कि बड़ी विडंबना है, कितनी विचित्र परिस्थिति है। हम समझ सकते हैं कि वास्तव में काल या समय कितना प्रबल कारक है। देखिए, काल के प्रभाव से यहां इतने बड़े बड़े विद्वान व्यक्ति, अनुभवी व्यक्ति सब भ्रमित हो चुके हैं। इतने योग्य व्यक्ति यहां पर हैं, लेकिन इनके बीच में, इनके होते हुए भी श्री कृष्ण को चुना गया है अग्र पूजा के लिए। ऐसी घोषणा मैं सुन रहा हूं कि श्री कृष्ण सबसे पूजनीय व्यक्ति हैं, तो इन ये सारे वरिष्ठ लोग हैं, उनकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई? ये है देखो काल का प्रभाव, काल का चमत्कार, ऐसे कैसे हो गया? और जहां तक ये श्री कृष्ण है इनके बारे में क्या कहना, इनका वर्ण क्या है किसी को नहीं पता। ये क्षत्रिय है, वैश्य है। आप तो जानते हैं कि वृंदावन में श्री कृष्ण वैश्य की भूमिका निभा रहे थे, द्वारका में क्षत्रिय की भूमिका निभा रहे थे। तो शिशुपाल ये बोल रहे हैं कि श्री कृष्ण का वर्ण है क्या, ये क्षत्रिय है, वैश्य है, क्या है? वास्तव में प्रभुपाद जी कहते हैं कि श्री कृष्ण का कोई वर्ण नहीं है, क्योंकि वो इन सब से परे हैं, वो तो परम सत्य हैं, भगवान हैं। कभी कभी वो ब्राह्मण समाज में प्रकट होते हैं, कभी कभी वो क्षत्रिय समाज में, तो कभी वैश्य समाज में, कभी पशु बनकर, कभी पक्षी बनकर। तो शिशुपाल इस प्रकार से कहने लगा कि ये श्री कृष्ण इतना स्वतंत्र है, न किसी शास्त्रों की बात मानता है, न कोई पूजा विधान में रुचि रखता है, ऐसे ये पागल हो गया शिशुपाल। उधर आगे महाभारत में ये भी कहा गया है कि शिशुपाल कहता है कि ऐसे कौन से विशेष कार्य श्री कृष्ण ने किए हैं जिसकी वजह से आप श्री कृष्ण की इतनी प्रशंसा कर रहे हो और आप उसे अग्र पूजा के लिए चुन रहे हो। उसने क्या किया, एक बतक को मार दिया ना, वो बतक को मार दिया, बतक अर्थात बकासुर, एक बतक को मार दिया, कौन सी बड़ी बात है? एक टूटा फूटा कोई वहां पे वो छोटी बैलगाड़ी पड़ी थी उसको मार दिया, शकट वहां पड़ा था तो आपने कह दिया शकट आसुर का वध कर दिया, इतना बड़ा आदमी हो गया। एक छोटे से सांप का जो नदी में रहता है उसको उसका दमन कर दिया, इसको कालिया नाम के तो आप बोल रहे हैं इतना शक्तिशाली है। एक बेचारी सौम्य सुंदर महिला थी, तरुणी, उसकी हत्या कर दी और आप बोलते हैं कि कितना महान है ये व्यक्ति। और वहां ये गोवर्धन, क्या है ये गोवर्धन? एक चींटियों का पहाड़ है वाल्मीकि, उसको थोड़ा उठा दिया तो इतना गुणगान कर रहे हैं। ऐसे शिशुपाल के मुख से विष या जहर वो बाहर निकलने लगा, जहर उगलते 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 समय बीत गया। और उधर भीष्म देव ने भीमसेन आदि को सांत्वना दी, क्योंकि भीमसेन और अन्य जो लोग थे वृष्णि वंश के वंश के इत्यादि, वो तो आग बबूले हो रहे थे। भीमसेन तो बहुत इच्छुक था कि वहीं उठ के वो आक्रमण करे, परंतु वैर अहंकार का प्रभाव ऐसे होता है कि व्यक्ति को वास्तविक परिस्थिति को पहचानने में कष्ट होता है। शिशुपाल ने देखा कि सारे राजा यहां पर अपने अस्त्र शस्त्र उठाकर खड़े हैं युद्ध करने के लिए, परंतु शिशुपाल को डर नहीं लगा। उसने सोचा कि मैं सबकी हत्या कर दूंगा। तो भीमसेन जब उठे और शिशुपाल की तरह आगे बढ़ने गए, जबकि शिशुपाल ने भीष्म देव की बहुत कड़ी निंदा की, तो भीष्म देव ने भी, हालांकि वो क्रोधित हो गए थे, भीष्म देव का मुंह भी लाल लाल हो गया था, फिर भी भीष्म देव ने सांत्वना दी भीमसेन को कि अरे भीम, मैं तुम्हें बताता हूं ये शिशुपाल की कहानी क्या है। जब इसका जन्म हुआ था तो सारे अशुभ लक्षण संपूर्ण वातावरण में दिखाई पड़ रहे थे, और जब इस बच्चे का जन्म हुआ शिशुपाल का, साधारण बच्चे जैसे रोके आते हैं वैसे नहीं रो रहा था, ये जैसे गधा आवाज करता है वैसे आवाज करके इस बच्चे का जन्म हुआ है। और इसके चार हाथ थे और एक तीसरी आंख भी यहां पर थी, और ऐसे भविष्यवाणी की गई थी कि जब इसकी हत्या करने वाला व्यक्ति उसको गोद में लेगा तो उसके दो हाथ और ये तीसरा आंख जो है वो गिर जाएगा। तो शिशुपाल के माता पिता शिशुपाल को, बाल शिशुपाल को हर एक अतिथि की गोद में रखते थे देखने के लिए कहीं ये आगे चल के हत्यारे होने वाले हैं कि नहीं। जब श्री कृष्ण और बलराम वहाँ पहुँचे और शिशुपाल की माता ने श्री कृष्ण के गोद में रख दी, उस समय तुरंत ये दो हाथ निकल गए, तीसरी आंख भी चली गई। तो उनको पता चला कि शिशु मेरे बेटी की हत्या करने वाले व्यक्ति श्री कृष्ण ही हैं। तो फिर उन्होंने याचना की श्री कृष्ण से कि कृपया मेरे पुत्र की हत्या ऐसे मत कीजिए। तो श्री कृष्ण ने उस समय कहा कि मैं बहुत सहन करूँगा, परंतु जब ये 100 बार लगातार मैं गाली देगा तब मैं इसकी हत्या करूँगा। और आगे चल के फिर श्री वैर तो बढ़ता गया शिशुपाल के मन में। तो भीमसेन ने को भीष्म देव ने कहा कि देखो, केवल श्री कृष्ण की योजना के अनुसार ही शिशुपाल ऐसे गड़गड़ा रहा है, बोल रहा है, क्योंकि अभी उसकी मृत्यु होनी है और श्री कृष्ण के कर कमलों के द्वारा ही होनी है, इसलिए हमको यहाँ इसमें हस्तक्षेप करना ठीक नहीं रहेगा। थोड़ा धीरज रखो और श्री कृष्ण शीघ्र ही शिशुपाल को ठीक कर देंगे। वैसे श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बताते हैं कि शिशुपाल राजसूय यज्ञ के संपन्न होने के अंत तक क्यों रुका रहा। प्रारंभ में ही उसने, जैसे ही ये घोषणा की गई थी कि ऐसे हो जाए, उसी समय क्यों नहीं किया। तो इसका उत्तर ये है कि शिशुपाल चाहता था कि राजसूय यज्ञ दूषित हो जाए, समाप्त हो जाए, क्योंकि वहाँ यदि युद्ध हो जाएगा तो सब जगह खून फैल जाएगा, रक्त की नदियाँ बहने लगेंगी, तो सारी यज्ञ स्थली तो है दूषित हो जाएगी, तो राजसूय यज्ञ संपन्न नहीं हो पाएगा पूरी तरह से, इसलिए अंत में किया। यदि पहले ऐसे विरोध किया होता तो और किसी दूसरे व्यक्ति को चुना होता तो सब कुछ सुचारू रूप से चल जाता। तो जब ऐसे शिशुपाल बोलने लगा तो श्री कृष्ण उठे और श्री कृष्ण स्वयं कहने लगे कि ये शिशुपाल को हम कब से सहन करते आए हैं। और श्री कृष्ण ने शिशुपाल के अपराधों का उल्लेख करना शुरू किया प्रारंभ से, कि कैसे उनके यदुकुल के निवासियों के प्रति इतने घोर अपराध किए थे उन्होंने। और फिर श्री कृष्ण ने अपने सुदर्शन चक्र को छोड़ दिया और छोड़कर एक क्षण के अंदर शिशुपाल की गर्दन कट गई और सबके आंखों के सामने शिशुपाल की आत्मा आके श्री कृष्ण के शरीर में प्रविष्ट हुई, सायुज मुक्ति मिली। परंतु भागवतम में और आचार्यों ने भी ये बताया है कि अंततः वो आगे चल के जय विजय के रूप में स्थित हो गए। श्रीमद् भागवतम ने हमने पढ़ा है कि जब जय और विजय को श्राप मिला था कि उन्हें 3 जन्म लेने हैं इस भौतिक जगत में असुर के शरीर में, तो सबसे पहले वो बने थे हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष, दूसरे जन्म में बने थे रावण और कुंभकर्ण, तीसरे जन्म में बने थे शिशुपाल और दंतवक्र। इसलिए जय और विजय इन दोनों के स्थान में उनको वापस जाना था, इसलिए सायुज्य मुक्ति नहीं हुई उनकी, वास्तव में जय और विजय के पद में वो वापस लौट के चले गए। तो इस कथा से हम जान सकते हैं कि कैसे वास्तव में श्री कृष्ण ही एकमात्र पूजनीय है, संपूर्ण सृष्टि के लिए अग्र पूजा स्वीकार करने के योग्य है। भगवद गीता में भी बार बार श्री कृष्ण और अर्जुन दोनों ही घोषणा करते हैं, और यहां विराट रूप का दर्शन करने के बाद भी अर्जुन यही कह रहे हैं कि आप ही एकमात्र पूजनीय व्यक्ति हैं मेरे लिए हे कृष्ण, और संपूर्ण सृष्टि के लिए। आहुस्त्वाम ऋषः सर्वे देवर्षिर्नारदस्तथा
असितो देवलो व्यासः स्वयं चैव ब्रवीषिमे, कि हे कृष्ण, इतने बड़े बड़े ऋषि मुनि हैं, जैसे कि असित देवल व्यास नारद, उन सब ने घोषणा की है कि आप ही परम ब्रह्म हैं, आप ही परम धाम हैं, आप ही परम पवित्र हैं, और स्वयं आप भी इसी बात की पुष्टि अब कर रहे हैं। तो हम सब के लिए श्री कृष्ण सबसे पूजनीय व्यक्ति है। श्री श्री राधा गोकुलानंद की जय। गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। हरे कृष्णा। कोई प्रश्न है आपके? हाँ, माइक यहाँ दीजिए।
हरे कृष्णा। हम शिशुपाल के कहानियां हम सुनते हैं, मगर दंतवक्र के कोई विशेष कहानी हम नहीं सुनते।
किनकी? दंतवक्र की? हाँ, दंतवक्र के बारे में भी बताया गया है भागवतम में। दंतवक्र का वध भी श्री कृष्ण ने किया, और दंतवक्र का वध करने के बाद श्रील जीव गोस्वामी बताते हैं कि श्री कृष्ण पुनः वृंदावन गए। यद्यपि श्रीमद् भागवतम में इसका स्पष्ट रूप से उल्लेख नहीं है, परंतु श्रील जीव गोस्वामी अन्य स्थानों से, अन्य ग्रंथों से प्रमाण देके कहते हैं कि दंतवक्र की हत्या करने के बाद वो वृंदावन गए थोड़े समय के लिए, अपने प्रिय ब्रजवासियों को मिले। तो हाँ, दंतवक्र का वर्णन इतने विस्तार में नहीं है, परंतु इतना अवश्य है, कई एक अध्याय हैं ऐसे दशम स्कंद में जिनमें श्री कृष्ण कैसे दंतवक्र का वध करते हैं इसका वर्णन पाया जाता है। हाँ, और बाल बच्चे को पूछना है। हाँ, पूछो।
हरे कृष्ण महाराज जी। महाराज जी, जब शिशुपाल जन्म लिए थे तो उनके पास 3 आंख थे और 4 हाथ पैर हाथ थे, ऐसे कैसे?
हाँ, ऐसे ही हुआ। अच्छा है कि हमारे साथ ऐसे नहीं होता है, विशेष विशेष व्यक्ति होते हैं, उनके साथ हो जाता है कभी। कोई और प्रश्न है? ठीक है, अच्छा एक प्रश्न यहाँ।
जब हम मतलब हम कोई नीच योनि में जन्म लेते हैं तो हमें नर्क में जाना पड़ता है या सिर्फ मनुष्य जीवन में ही नर्क में जाना पड़ता है?
जब मनुष्य जीवन में रह के कोई बहुत घोर पाप करता है तो उसे नरक में जाना पड़ता है अपने कर्मों के फलों को भुगतने के लिए, परंतु सारे पाप उसके नरक लोक में समाप्त नहीं होते हैं। तो जो बचे हुए पाप हैं उनको भुगतने के लिए क्रमशः वो पृथ्वी लोक पे आके नीच योनियों में भ्रमण करता है, कीड़ों में, पेड़ पौधों में, जानवरों में, और धीरे 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 से फिर उसके पाप, जितने पापों की पूंजी है वो समाप्त होते होते फिर उसे मनुष्य योनि मिल जाती है। फिर भी थोड़ी बहुत पाप रह जाते हैं, इसलिए वो उनको भी भुगतना पड़ता है मनुष्य योनि में। ठीक है, ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल।